नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। द प्रॉस्पेरिटी पैराडॉक्स क्लेटन एम क्रिस्टेंसन, इफोसा ओजोमो और कैरन डिलन की आर्थिक विकास और नवाचार पर केंद्रित गैर कथात्मक पुस्तक है। यह उस प्रचलित धारणा को चुनौती देती है कि गरीबी का स्थायी समाधान मुख्यतः सहायता, बुनियादी ढांचे, बेहतर कानूनों या संसाधनों के बड़े प्रवाह से निकलेगा। लेखक इन उपायों की मानवीय उपयोगिता से इनकार नहीं करते, लेकिन कहते हैं कि वे अपने आप टिकाऊ समृद्धि पैदा नहीं करते। पुस्तक का केंद्रीय प्रस्ताव है कि बाजार निर्माता नवाचार, अर्थात जटिल और महंगे उत्पादों या सेवाओं को सरल तथा किफायती बनाकर गैर उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, रोजगार, संस्थाएं और व्यापक आर्थिक गतिविधि पैदा कर सकता है। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, नाइजीरिया और अन्य संदर्भों के उदाहरणों के सहारे लेखक ऊपर से संचालित विकास मॉडल के बजाय उद्यमिता आधारित दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। इसका उद्देश्य गरीबी को केवल संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि अनसुलझी मानवीय समस्याओं और अनुपस्थित बाजारों के रूप में समझना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, बाजार निर्माता नवाचार गैर उपभोक्ताओं को ग्राहक बनाता है। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण विचार बाजार निर्माता नवाचार है। इसका अर्थ केवल नया उत्पाद बनाना नहीं है, बल्कि किसी ऐसी वस्तु या सेवा को इतने सरल, सुलभ और किफायती रूप में उपलब्ध कराना है कि वे लोग भी उसका उपयोग कर सकें जो पहले उससे बाहर थे। लेखक इन्हें गैर उपभोक्ता कहते हैं। किसी व्यक्ति के पास परिवहन, वित्त, स्वास्थ्य सेवा या उपयोगी उपभोक्ता वस्तु की जरूरत हो सकती है, फिर भी ऊंची कीमत, कठिन पहुंच, जटिलता या भरोसे की कमी के कारण वह ग्राहक नहीं बन पाता। बाजार निर्माता नवाचार इसी अंतर को अवसर मानता है। जब बड़ी संख्या में नए लोग उपभोग करने लगते हैं, तब मांग केवल बिक्री नहीं बढ़ाती, वह वितरण, मरम्मत, प्रशिक्षण, आपूर्ति, भुगतान और स्थानीय रोजगार जैसी सहायक गतिविधियों को भी जन्म देती है। इसीलिए लेखक बाजार निर्माण को कंपनी और देश दोनों के निर्माण से जोड़ते हैं। तर्क यह नहीं है कि प्रत्येक समस्या को निजी बाजार हल कर देगा, बल्कि यह है कि जहां लोगों की वास्तविक समस्या के अनुरूप व्यवहार्य समाधान बनाया जाता है, वहां आय और क्षमता पैदा होने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। विकास निवेश का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि वह निर्भरता घटाकर टिकाऊ लेनदेन और स्थानीय भागीदारी बनाता है या नहीं। दूसरा, तीन प्रकार के नवाचारों में केवल एक नई आर्थिक मांग पैदा करता है। क्रिस्टेंसन की नवाचार रूपरेखा पुस्तक के तर्क को स्पष्ट करती है। लेखक बाजार निर्माता नवाचार को स्थायी या संवर्धक नवाचार और दक्षता नवाचार से अलग रखते हैं। स्थायी नवाचार मौजूदा ग्राहकों के लिए किसी पहले से स्थापित उत्पाद या सेवा को बेहतर बनाता है। वह गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा के लिए उपयोगी हो सकता है, पर सामान्यतः नए उपभोक्ताओं की विशाल आबादी नहीं बनाता। दक्षता नवाचार का लक्ष्य कम संसाधनों में वही काम करना, लागत घटाना और प्रक्रियाएं तेज करना होता है। यह भी आवश्यक है, किंतु इसका तत्काल प्रभाव कभी कभी रोजगार और पूंजी की जरूरत कम करना हो सकता है। इसके विपरीत, बाजार निर्माता नवाचार नई मांग पैदा करता है, क्योंकि वह पहले वंचित लोगों को बाजार में लाता है। पुस्तक मेक्सिको जैसे संदर्भ के माध्यम से चेतावनी देती है कि दक्षता पर अत्यधिक जोर आर्थिक विस्तार का विकल्प नहीं है। लेखक दक्षता या गुणवत्ता सुधार को निरर्थक नहीं कहते, उनका बिंदु प्राथमिकताओं का है। जिन अर्थव्यवस्थाओं में बड़ी आबादी गैर उपभोक्ता है, वहां केवल मौजूदा बाजारों को अधिक कुशल बनाना सीमित परिणाम देगा। नए बाजारों में निवेश रोजगार, कौशल और कर आधार बढ़ाने की अधिक व्यापक संभावना रखता है। इसलिए नीति और पूंजी को नवाचार के प्रकार तथा उसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव के अनुसार अलग अलग देखना चाहिए। तीसरा, लोगों के संघर्ष को समझना संसाधन पहुंचाने से पहले आता है। पुस्तक सहायता आधारित विकास की एक मूल सीमा पर ध्यान देती है। गरीबी अक्सर खराब स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, कमजोर बुनियादी ढांचे या धनाभाव के रूप में दिखाई देती है। इन कमियों को दूर करने के लिए संसाधन देना तत्काल राहत दे सकता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि यह समृद्धि का स्वचालित तंत्र नहीं है। स्कूल को लगातार शिक्षक और संचालन चाहिए, कुएं को रखरखाव चाहिए और नकद सहायता समाप्त हो जाती है। इसलिए प्रश्न केवल यह नहीं होना चाहिए कि किसी समुदाय के पास क्या नहीं है, बल्कि यह कि लोग किस काम को करने में संघर्ष कर रहे हैं और वर्तमान विकल्प उनके लिए क्यों अनुपयोगी है। यह दृष्टि क्रिस्टेंसन के जॉब्स टू बी डन विचार से जुड़ती है, जिसमें उत्पाद को उसकी विशेषताओं से नहीं, उपयोगकर्ता की वास्तविक परिस्थिति में उसके काम से समझा जाता है। उद्यमी के लिए इसका अर्थ स्थानीय जीवन, कीमत की सीमा, वितरण की कठिनाई, भरोसे और सुविधा को गंभीरता से देखना है। किसी बाहरी समाधान को धकेलने के बजाय ऐसा प्रस्ताव बनाना होगा जिसे लोग अपनी जरूरत के कारण अपनाना चाहें। लेखक इसे पुल और पुश के अंतर के रूप में रखते हैं। मांग से खिंचने वाला समाधान अधिक टिकाऊ होने की संभावना रखता है, क्योंकि ग्राहक, आपूर्तिकर्ता और निवेशक उसके बने रहने में प्रत्यक्ष हित रखते हैं। चौथा, संस्थाएं और शासन अक्सर बाजार निर्माण के परिणाम स्वरूप मजबूत होते हैं। आर्थिक विकास की बहस में भ्रष्टाचार, कमजोर कानून और अपर्याप्त संस्थाओं को प्रायः सबसे पहली बाधा माना जाता है। द प्रॉस्पेरिटी पैराडॉक्स इस क्रम को आंशिक रूप से उलटता है। लेखक स्वीकार करते हैं कि न्यायपूर्ण कानून और सक्षम शासन महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका तर्क है कि केवल अच्छे नियम लिख देने से व्यापक समृद्धि नहीं आती। इसी तरह भ्रष्टाचार को वे हमेशा मूल कारण की तरह देखने से सावधान करते हैं। कमजोर व्यवस्था में लोग सेवाएं प्राप्त करने, अनिश्चितता घटाने या अपनी आजीविका चलाने के लिए अनौपचारिक रास्ते अपनाते हैं। बाजार निर्माता उद्यम जब बड़ी संख्या में लोगों को विश्वसनीय और उपयोगी सेवा देता है, तब उसे स्थिर भुगतान व्यवस्था, आपूर्ति नेटवर्क, सुरक्षा अनुबंध, प्रशिक्षित श्रम और अनुमानित नियमों की आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता संस्थागत सुधार के लिए व्यावहारिक दबाव बना सकती है। इस विचार का अर्थ भ्रष्टाचार या खराब शासन को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि पुस्तक का सुझाव है कि सुधारों को केवल नैतिक अपील या प्रशासनिक डिजाइन तक सीमित न रखा जाए, उन आर्थिक गतिविधियों को भी समझा जाए जो लोगों और सरकार दोनों को अधिक सक्षम संस्थाओं में निवेश करने का कारण देती है। बाजार निर्माण शासन सुधार का विकल्प नहीं, पर उसके लिए मांग और संसाधन पैदा करने वाला पूरक मार्ग हो सकता है। अंत में, इतिहास के उदाहरण विकास को पूर्व निर्धारित नियति के बजाय प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। लेखक अमेरिका के फोर्ड, ईस्टमैन कोडक और सिंगर सिलाई मशीन जैसे ऐतिहासिक उदाहरणों के साथ जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, नाइजीरिया, रवांडा, अर्जेंटीना और मेक्सिको के अनुभवों की चर्चा करते हैं। इन उदाहरणों का उद्देश्य यह दावा करना नहीं है कि हर देश दूसरे देश की नकल कर सकता है। उनका उपयोग एक पैटर्न दिखाने के लिए है। जब पहले महंगे या सीमित उत्पाद आम लोगों की पहुंच में आते हैं, तो उत्पादन और वितरण के आसपास नई आर्थिक संरचनाएं बनती हैं। फोर्ड का महत्व केवल मोटर गाड़ी बनाने में नहीं, बल्कि परिवहन को अपेक्षाकृत अधिक लोगों तक पहुंचाने वाली उत्पादन और कीमत व्यवस्था में था। इसी तरह पुस्तक यह देखती है कि समृद्धि एक घटना नहीं, निरंतर प्रक्रिया है जिसमें उपभोक्ता पहुंच, उद्यम, रोजगार और संस्थागत क्षमता परस्पर प्रभाव डालते हैं। यह ऐतिहासिक दृष्टि संसाधन संपदा को विकास का पर्याप्त कारण मानने से भी रोकती है। किसी देश के पास प्राकृतिक संसाधन या विदेशी सहायता हो सकती है, फिर भी यदि वे व्यापक उत्पादक बाजारों में नहीं बदलते तो लाभ सीमित रह सकता है। पुस्तक की उपयोगी सावधानी यह है कि संदर्भ मायने रखता है। समाधान आयात करने के बजाय स्थानीय गैर उपभोग और संघर्ष को समझकर बाजार निर्माण की दिशा खोजनी चाहिए। निष्कर्ष में, द प्रॉस्पेरिटी पैराडॉक्स उद्यमियों, विकास क्षेत्र के पेशेवरों, नीति निर्माताओं, निवेशकों और आर्थिक विकास के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इसे उन पाठकों को भी पढ़ना चाहिए जो गरीबी पर चर्चा में सहायता, शासन और बुनियादी ढांचे की परिचित भाषा से आगे बढ़कर मांग, उद्यमिता और उपभोक्ता पहुंच की भूमिका समझना चाहते हैं। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह समस्या को संसाधनों की सूची के रूप में देखने के बजाय गैर उपभोग के अवसर के रूप में पहचानने का प्रश्न देती है। पाठक पूछ सकता है कि लोग कौन सा जरूरी काम नहीं कर पा रहे हैं, मौजूदा विकल्प क्यों विफल है और किस प्रकार का सरल किफायती समाधान टिकाऊ मांग बना सकता है। बौद्धिक स्तर पर इसकी ताकत विकास के कारण और परिणामों के संबंध को चुनौती देने में है। लेखक कहते हैं कि बेहतर संस्थाएं और अवसंरचना महत्वपूर्ण है, किंतु कई बार वे बाजार निर्माण के साथ विकसित होते हैं, केवल उसके पूर्व शर्त के रूप में नहीं। समान विषय की कई पुस्तकों की तुलना में यह पुस्तक सहायता की आलोचना तक सीमित नहीं रहती। यह बाजार निर्माता नवाचार, गैर उपभोक्ता, पुल आधारित मांग और नवाचार के विभिन्न प्रकारों का एक संगत ढांचा देती है। फिर भी इसे किसी सार्वभौमिक नुस्खे की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। राजनीतिक संघर्ष, सार्वजनिक सेवाएं और असमानता वास्तविक चुनौतियां हैं। इसकी सबसे उपयोगी स्थिति एक वैकल्पिक विकास दृष्टि के रूप में है, जो सार्वजनिक कार्रवाई को हटाने के बजाय उत्पादक बाजारों और स्थानीय समस्या समाधान को केंद्र में रखती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं, क्लेटन एम क्रिस्टेंसेन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।